नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। नेपाल में बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर अग्रसर, मतगणना जारी। पश्चिम एशिया में संघर्ष आठवें दिन भी जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के बिना शर्त समर्पण करने तक उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका में 92,000 नौकरियों की कमी, बेरोजगारी दर 4.4% तक बढ़ी। और बैडमिंटन में इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। समाचार विस्तार से। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हिंसक जेनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद वे पहले आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से 28 सीटों के अंतिम परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं और 97 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है और 9 में आगे है। यूएमएल को 1 सीट मिली है और 13 में आगे है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं और 10 में आगे चल रही है। श्रम संस्कृति पार्टी 5 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे है। मतगणना अभी जारी है। संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि शेष 110 सदस्य आनुपातिक प्रणाली से चुने जाते हैं। इसराइल और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच संघर्ष का आज 8वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार करते हुए उसके बिना शर्त समर्पण की मांग की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के समर्पण करने पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। एक रिपोर्ट।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कहा है कि कुछ देशों ने अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है, फिर भी उसे राष्ट्र की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने में कोई संकोच नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने इस संकट के लिए अमरीका को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका द्वारा समुद्र में एक ईरानी ड्रोन वाहक पर हमला करने के बाद इसराइल ने ईरान और लेबनान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल रक्षा बलों ने कहा कि 50 लड़ाकू विमानों ने दिवंगत ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई से जुड़े भूमिगत सैन्य बंकरों और लगभग पूर्ण हवाई वर्चस्व का दावा किया। इसराइली सेना के अनुसार 2,500 से अधिक हमले किए गए हैं, जिनमें ईरान की 80% हवाई रक्षा प्रणालियां नष्ट हो गई हैं। इस संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने वैश्विक आर्थिक प्रभाव की चेतावनी देते हुए कहा कि खाड़ी देशों से ऊर्जा निर्यात में गिरावट आ सकती है और कच्चे तेल की कीमत 150 अमरीकी डॉलर बैरल तक पहुंच सकती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण कल भारत से संचालित होने वाली कुल 278 उड़ानें रद्द कर दी गयी। नागर विमानन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि 5 मार्च से यात्री आवागमन आंकड़ों के अनुसार पश्चिम एशिया क्षेत्र से भारतीय एयरलाइंस की कुल 40 उड़ानें भारत पहुंची, जिनमें 7,200 से अधिक यात्री सवार थे। इसके साथ ही पश्चिम एशिया से अब तक 14,900 से अधिक यात्री भारत आए हैं। इस दौरान यात्रियों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए 2400 घंटे यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष कार्यरत है और एयरलाइंस तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। अब तक एयर सेवा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन कॉल के माध्यम से 1,800 से अधिक यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। अमेरिका ने भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को संशोधित एयर करियर परमिट दे दिया है। इस एयर इंडिया को दोनों देशों के बीच यात्री, कार्गो और चार्टर उड़ानें संचालित करने की अनुमति मिल गई है। इनमें भारत के आसपास के देशों, भारत से होकर और भारत तथा अमेरिका के बीच किसी अन्य स्थान से अमेरिका और उससे आगे तक जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद संशोधित परमिट प्रभावी हो गया है। अमेरिकी कानून के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा जारी विदेशी एयरलाइन परमिट राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो आदेश स्वतः प्रभावी हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिका की बड़ी रक्षा विनिर्माण कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां उत्कृष्ट श्रेणी वाले हथियारों के उत्पादन को 4 गुना बढ़ाने पर सहमत हो गई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के पास मध्यम और उच्च मध्यम श्रेणी के गोला बारूद का बड़ा भंडार है जिसका उपयोग न केवल ईरान बल्कि वेनेजुएला में भी किया गया है। इस वर्ष फरवरी में अमरीकी अर्थव्यवस्था में नौकरियों की संख्या में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमरीका में 92,000 नौकरियां कम हुई हैं, बेरोजगारी दर बढ़कर 4.4% हो गई है। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब ईरान में अमरीका इसराइल संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में उछाल से वृद्धि पर असर पड़ने की आशंका है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सहित लगभग हर क्षेत्र में नौकरियां कम हुई हैं। संघीय सरकार में भी रोजगार में गिरावट जारी रही और पिछले महीने इसमें 10,000 की कमी आई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने केरल के कोच्चि में ईरान के एक जहाज को आपातकालीन डॉकिंग की अनुमति दे दी है और चालक दल के 183 सदस्यों के रहने की व्यवस्था की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका के दक्षिण में IRIS डेना की घटना से कुछ दिन पहले ईरान ने भारत से अपने जहाज IRIS लावण को शरण देने का अनुरोध किया था जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा के लिए क्षेत्र में मौजूद था। सूत्रों ने बताया कि ये अनुरोध पिछले महीने की 28 तारीख को प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि जहाज में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण कोच्चि में डॉकिंग की तत्काल आवश्यकता है। सूत्रों ने कहा कि 1 मार्च को डॉकिंग की अनुमति दी गई थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कल श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस, केन्या, माल्टा, सेशल्स और रवांडा के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से 4 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन और चिली जाएंगे। श्री सिंह कल और सोमवार को लंदन में 26वीं राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक और राष्ट्रमंडल दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत राष्ट्रमंडल में सबसे अधिक योगदान करने वाले देशों में शामिल है और उसने संगठन को तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण में सहयोग दिया है। राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है और यह राष्ट्रमंडल सदस्यों विशेष रूप से द्वीप विकासशील देशों के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। श्री सिंह के राष्ट्रमंडल नेतृत्व और सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करने की भी आशा है। ब्रिटेन के बाद विदेश राज्य मंत्री चिली जाएंगे। वे 10 से 12 मार्च तक चिली के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट रिस्ट के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं पायल शर्मा।
इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। प्रतियोगिता में कल रात लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फेंग को हराया था। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की भारतीय जोड़ी हांगकांग की जोड़ी से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। और भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कल चेक गणराज्य में आयोजित प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग के 9वें और अंतिम दौर में स्पेन के डेविड टोन गुजारो को हराया। भारत के अरविंद चिदंबरम ने अंतिम दौर में चेक गणराज्य के डेविड नवारा को हराकर 5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। उज्बेकिस्तान के नौदरवेग अब्दुसत्तारोव 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। चैलेंजर्स वर्ग में भारत की दिव्या देशमुख ने चेक गणराज्य की हार्विक स्टेपन को हराकर 5 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली 4 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहे। इसके अलावा ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में कल शाम भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर अग्रसर, मतगणना जारी। पश्चिम एशिया में संघर्ष 8वें दिन भी जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के बिना शर्त समर्पण करने तक उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका में 92,000 नौकरियों की कमी, बेरोजगारी दर 4.4% तक बढ़ी। और बैडमिंटन में इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।